कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु पायो उसी ने
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पुराने नियम के पुस्तक के पहले शमूएल नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने देखा कि शाऊल प्रत्यक्ष रूप से दाऊद के प्राण का खोजी हो गया था, परंतु योनातान ने उसे गुप्त भाषा में समझा दिया था कि वह वहां से भाग जाए। वहां से भागकर दाऊद नोब में अहीमेलेक याजक के पास पहुंचा। वहां उसने भेंट की उठाई हुई रोटियां ली और खाई। वहां से चलकर वह गत के राजा अक्कीस के पास पहुंचा, परंतु खतरे का बोध पाकर वह पागल का नाटक करने लगा। वहां से बचकर दाऊद अदुल्लाम की गुफा में पहुंचा और तब हम इसके आगे के अध्ययन में आज बढ़ेंगे जो अध्याय 22 से है। मित्रों, आज हम अध्याय 22 में दाऊद के जीवन का वह समय देखते हैं जब वह गुफाओं में छिपा हुआ था। वह सीख रहा था कि राजा के काम में शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जैसे उसने अपने अन्य जनों के साथ किया था। शाऊल से छिपने के इस समय में उसको खोजा जा रहा था और उसका पीछा किया जा रहा था। वह मारा मारा फिर रहा था। राजा के क्रोध के कारण उसे जंगल में और गुफाओं में छिपना पड़ रहा था और इस समय दाऊद ने अपने लिए कहा, पहला, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे, इसे हम पहला शमूएल 26 के 20 पद में पाते हैं, और दूसरी बात, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, भजन संहिता 102 उसके 6 पद में कहा, और तीसरी बात, मैं उजड़े स्थान के उल्लू के समान बन गया हूँ, भजन संहिता 102 उसके 6 पद में, और चौथी बात, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, भजन संहिता 57 उसका 4 पद। और पांचवी बात, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, भजन संहिता 57 उसका 6 पद। मेरे मित्रों, शाऊल से भागने के इस समय में दाऊद पूरी तरह थक चुका था। शाऊल उसकी जान के पीछे पड़ गया, तब वह अदुल्लाम की गुफा में छिप गया। यह स्थान यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम में पलिस्तियों और हेब्रोन के मध्य की घाटी है, जो एक प्रकार का चट्टानी किला है। आइए अब हम आगे बढ़ें और पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद और प्रभु यीशु मसीह में अद्भुत तुलना की जा सकती है। दाऊद का यह परित्याग के लगभग 10 वर्ष प्रभु के वर्तमान समय के साथ समतुल्य है। आप और मैं उसके परित्याग के युग में वास करते हैं। संसार ने मसीह को वैसे ही त्याग दिया है जैसे दाऊद को त्याग दिया गया था। उसका वैरी शाऊल चारों ओर था, हमारा वैरी शैतान भी हमारे चारों दिशा में है। पहला पत्रस के पत्री अध्याय 5:8 पद में हमें चिताया गया है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, यही दाऊद ने कहा था, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है। आज हम भी यही बात कह सकते हैं। इन दिनों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में से अपने नाम के लिए एक जाति तैयार कर रहा है। वह बोझ से दबे और ऋणी संतोष से रहित उदास मनुष्यों को बुला रहा है। मित्रों, दाऊद के युग में भी यही तीन मानव वर्ग उपस्थित थे। उस समय संकट में पड़े मनुष्य वे थे जिन्हें शाऊल ने सताया हुआ था। दाऊद बहुत समय से शाऊल के संबंध में नहीं था। शाऊल के अनेक निष्ठावान जीवन संकट के कारण भागकर दाऊद से मिल गए थे। मेरे मित्रों, यदि आपने संसार में अन्याय की भार सही है, यदि आपने पक्षपात सहा है, यदि आप पीड़ित हैं और जानते नहीं कि कहां जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह को देखें। आज मनुष्य परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के मार्ग खोजता है, नशा, मदिरा, आत्महत्या आदि, परंतु एक ऐसा मनुष्य है जो आज हम सबको बुला रहा है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जी हाँ, वह आपकी सहायता करना चाहता है, वह आपकी सहायता करने के लिए सक्षम है और वह तैयार है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। क्या आपकी परीक्षा और परख हो रही है? क्या आप संकट में हैं? आपको मुक्तिदाता की आवश्यकता है और वह आज उनको बुला रहा है जो उसके पास इसी क्षण आने को तैयार हैं। मेरे मित्रों, दाऊद के परित्याग के समय वे भी उसके पास आए जो ऋणी थे। ऋण एक प्रकार का कैंसर है जो किसी भी परिस्थिति में विनाश लाता है। उस युग में ऋणी मनुष्य की अपनी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और उसे दासत्व में बेच दिया जाता था। मनुष्य को सुरक्षित रखा जाना, परंतु वे सुरक्षित नहीं थे। शाऊल ऋणग्रस्त मनुष्यों को दासत्व में जाने देता था, वह मूसा की व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा था। मेरे मित्रों, पाप ने हमें परमेश्वर के ऋणी बना दिया है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना करनी सिखाई थी उसमें यह भी है, हमारे अपराधों को क्षमा कर। जी हाँ, केवल परमेश्वर ही है जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है। क्षमा सदैव ऋण के चुकाए जाने पर आधारित होती है और ऋणग्रस्त को भागना पड़ता है। दाऊद ने तो किसी का ऋण नहीं चुकाया, परंतु मसीह यीशु ने चुकाया। उसने क्रूस की मृत्यु द्वारा यह ऋण चुकाया है। उसने हमें मुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए यह किया। उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमारी सजा भुगत ली ताकि हम उसे आजाद किए जाएं। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप परमेश्वर के ऋणी हैं और आपके पास ऋण चुकाने का साधन नहीं है, तो मसीह यीशु आपका ऋण चुका देगा। मेरे मित्र, आप भागकर उसके शरण में आ सकते हैं, यह ऐसा अद्भुत सौभाग्य है। जितने उदास थे वे सब दाऊद के पास आए थे। उनके जीवन में कड़वाहट भरी थी। जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों के कारण उनका मन खट्टा हो गया था। पिछले कुछ वर्षों से मैं संसार की बड़ी बेचैनियों को देख रहा हूँ। कहीं कहीं तो वह बाद में समान दिखाई देती है। किसी न किसी कारण से मनुष्य जुलूस और विरोधी प्रदर्शन करता है। असंतोष और अधीरता छिपी हुई है। मेरे मित्रों, जीवन में परमेश्वर का हाथ ना हो तो वह कड़वाहट से भर जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंतिम अध्यायों में यूसुफ की कहानी में यह तथ्य स्पष्ट है। मेरे मित्रों, आज एक ऐसा मनुष्य है जिसके पास आप जा सकते हैं। वह एक अस्वीकृत राजा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और योहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में उसने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मेरे मित्रों, निर्वासन में जब दाऊद इस 400 संकटग्रस्त, ऋणग्रस्त और उदास मन के लोगों को अपना कर चुका, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक यहाँ पर प्रकट होता है। आज उसके परित्याग के युग में प्रभु यीशु इस संसार से अपने नाम के निमित्त एक मानव जाति को बुला रहा है, जो उसकी आवाज सुनकर उद्धार को प्राप्त करेगा। हम पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। मित्रों, दाऊद से कई पीढ़ी पूर्व एक और परिवार था जो मोआब जाकर बस गया था। आपको स्मरण होगा कि इसराइल में अकाल के कारण एलीमेलेक अपने परिवार के साथ मोआब को चला गया था, और बाइबल की कहानी में रूत का प्रवेश हुआ। दाऊद का पिता उस मोआबिन रूत का पोता हुआ। निसंदेह यही कारण था कि मोआब के राजा ने उन्हें मोआब में शरण दी। इसराइल को छोड़कर मोआब जाने का अर्थ यह हुआ कि दाऊद वास्तव में अत्यधिक भयभीत था। जहां तक मेरा अपना विचार है, उसे इसराइल नहीं छोड़ना था, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करता। उसका विश्वास भी अब्राहम की नाई डगमगा गया था, और यह तब हुआ जब अब्राहम मिस्र को गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें, शाऊल परमेश्वर के याचकों का संहार करता है। हम पहला शमूएल की पुस्तक 22 अध्याय उसके 5 से 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गीबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा कि हे बिन्यामिनियों, सुनो, क्या ईशय का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने ईशय के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। मेरे मित्रों, यह सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि शाऊल में शंकालु प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी। उसमें उत्पीड़न मनोग्रंथि का विकास हो गया था, और संभवतः क्योंकि उसने यह पाया कि उसका अपना पुत्र ही उसके साथ निष्ठावान नहीं था। वह सोच रहा था कि उसके अपनों ने ही उसे नहीं बताया कि दाऊद कहाँ है। एक मनुष्य था जिसे पता था कि दाऊद कहाँ है और उसने शाऊल को जानकारी दी। वह वहां परमेश्वर के भवन में था जब दाऊद ने भेंट की रोटियां खाई थी। मित्रों, हम पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो इशै के पुत्र को नोब के अहितुब के पुत्र अहिमेले के पास आते देखा और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिस्ती गोलियात की तलवार भी दी। मित्रों, यहाँ पर देखिए कि दोएग से जानकारी लेकर शाऊल याजक अहिमेलेक के पास जाने का निर्णय लेता है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 11 से 14 पद में लिखा हुआ है, और राजा ने अहितूब के पुत्र अहिमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा, और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए तब शाऊल ने कहा कि हे अहितूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा? शाऊल ने उसे पूछा, क्या कारण है कि तू और इशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहिमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राज्यसभा में उपस्थित हुआ करता है और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दें, शाऊल ने अहिमेलेक और नोब के अन्य याचकों को बुलवाया। शाऊल ने अहिमेलेक से दाऊद की सहायता करने का स्पष्टीकरण मांगा। उसने राजा को सच्चाई बता दी। उसके उद्देश्य भले थे और उसे इस तथ्य का बोध नहीं था कि दाऊद ने उसे सच छिपाया था। आगे चलकर दाऊद को दुख हुआ था कि उसने अहिमेलेक को भ्रम में रखा कि वह राजा के काम से निकला था। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए ना मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहिमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि क्रोध के कारण शाऊल कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने याजक की हत्या का आदेश दिया। उसके सेवक इस आज्ञा का पालन करने से पीछे हटे, परंतु शाऊल अपने विद्रोह और पाप में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह अंधा हो गया था। अतः उसने दोए को आदेश दिया कि वह यह घृणित काम करे। पहला शमूएल 22 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, तब राजा ने दोएक से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएक ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोत पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। मेरे मित्रों, शाऊल का यह अपराध अत्यधिक गंभीर और भयावह था। यदि परमेश्वर पहले उसका त्याग नहीं करता तो निश्चय ही अब करता। हम पहला शमूएल 22 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, और याजकों के नगर नोब और उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूधपियों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। शाऊल की कड़वाहट और प्रतिकार सीमा पार कर गई थी। हमें आज कड़वाहट से सावधान रहना है, वरन इसकी चेतावनी भी हमें दी गई है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के जनों के मन में कड़वाहट के आ जाने से वे भ्रष्ट और भयंकर बात होती है। मैंने कलीसियाओं में देखा है कि कलीसिया के पदाधिकारी अपने पद को मसीह के महिमान्वयन में उपयोग नहीं करते हैं। वे किसी न किसी के प्रति द्वेष, कड़वाहट, प्रतिकार, घृणा उगलने के लिए अपना पद का काम लेते हैं। कड़वाहट के अधीन हो जाना अति भयंकर बात है। मेरे मित्रों, शाऊल के साथ ऐसा ही हुआ था। वह निश्चय ही शैतान का जन था। आप और मैं किसी को मन और प्राणी की कड़वाहट में देख उसके उद्धार के विषय निश्चिंत नहीं कह सकते हैं। चाहे वह मनुष्य की सेवा में सक्रिय ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में गेहूं से मोठ चुनना कठिन होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही था। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 22 भी समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 23 से जारी रखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि निर्वासन में भी परमेश्वर दाऊद की सुधि लेता है। दाऊद अपने 600 साथियों के साथ अब भी भाग रहा था। योनातन दाऊद से भेंट की और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। हम देखेंगे दाऊद पलिस्तियों से युद्ध करता है। पहला शमूएल 23 अध्याय उसके 1-5 पद लिखा है, और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिस्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हांक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि इसराइल के सदा के वैरी पलिस्ती किला के निवासियों के खलिहानों को लूट रहे थे। यहां ध्यान दीजिए कि किला की सहायता करने से पूर्ण दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा की खोज की। यद्यपि दाऊद शाऊल से बचकर भाग रहा था, उसने परमेश्वर की प्रजा की सहायता की। शाऊल को जब यह समाचार मिला कि दाऊद और उसके साथी बेड़े वाले नगर में हैं, तो वह प्रसन्न होकर अपनी सेना के साथ वहां गया कि दाऊद अब उसके हाथ में होगा, वह उन्हें पकड़ पाएगा। दाऊद ने फिर परमेश्वर से पूछा कि वह क्या करे। परमेश्वर ने उससे कहा कि किला के निवासी उसे शाऊल को पकड़वा देंगे, अतः वह वहां से भाग जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 23 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 से थे किले से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहां जाने की मनसा छोड़ दी। अर्थात वे दल बनाकर नहीं, विसर्जित होकर वहां से निकल गए, क्योंकि उनको अपना जान बचाना था। शाऊल दाऊद का पीछा करता है। योनातन और दाऊद वाचा बांधते हैं। हम पहला शमूएल 23 अध्याय उसके 14-16 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद तो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नाम जंगल के होरेस नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि योनातान अपने मित्र दाऊद के साथ अत्यधिक विश्वास योग्य है और उसे ढाढ़स बंधाने की ही बातें करता है। तब हम पहला शमूएल 23 अध्याय उसके 17-18 पद में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इसराइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातान अपने घर को चला गया। योनातान के कहने का सारांश यह है कि शाऊल अंतिम परिणाम जानते हुए भी संघर्षरत है। शाऊल निसंदेह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा था। वह परमेश्वर से विद्रोह में था। योनातान परमेश्वर की इच्छा ही पूरी करना चाहता था। योनातान के कामों से उसकी महानता प्रकट होती है। मित्रों, उसका स्वभाव मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्मरण कराता है। यूहन्ना ने यीशु के बारे में कहा था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:30 में पाते हैं, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तब हम आगे देखते हैं 1 शमूएल 23:19 में, तब जीपी लोग गीवा के शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नाम पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशिमोन के दक्षिण की ओर है। मित्रों, शाऊल तो दाऊद को पकड़ने का दृढ़ संकल्प कर चुका है और जीवी लोग उससे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दाऊद उसके हाथों में पकड़वाएंगे। तब हम 1 शमूएल 23:26 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। ध्यान दीजिए, शाऊल ने दाऊद को घेर लिया था और यदि पलिस्तियों ने आक्रमण न किया होता तो अति संभव है कि दाऊद पकड़ा जाता। यहाँ परमेश्वर का सिद्ध समय देखिए कि उसने दाऊद की रक्षा कैसे की। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा है, फिर भी परमेश्वर अपने चुने हुए दास की रक्षा करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, चाहे शत्रु हमारे चारों ओर क्यों ना हो। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम इस महान गवाही को देखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा दाऊद की रक्षा करता है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो, गाओं गीत गाओ तुम। जलते चिराग खुदा की हो।
औला